ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए बीआरआई ऑपरेशन फ्रेमवर्क को पर राष्ट्र मंत्रालय ने किया सार्वजनिक। फ्रेमवर्क अंतर्गत 10 परियोजनाएं हैं शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और इसराइल ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चीन के साथ हस्ताक्षर किए गए बेल्ट एंड रोड बीआरआई कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क को सार्वजनिक किया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज वेबसाइट के जरिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण के दौरान मार्गशीर्ष 19 को समझौता हुए बीआरआई क्रियान्वयन फ्रेमवर्क को सार्वजनिक किया है। फ्रेमवर्क में परियोजना में निवेश करते समय दो देशों की जरूरत के तहत सहयोग संबंधी वित्तीय मॉडलिटी तय होने का उल्लेख है। फ्रेमवर्क अंतर्गत 10 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें टोखा छहरे सुरंग मार्ग, हिल्सा सिमिकोट सड़क परियोजना, कीमाथांग खादवारी सड़क व कीमाथांग पुल, चीन नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना, मदन भंडारी विश्वविद्यालय लगायत शामिल है। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा है कि नेपाल मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता मान्यता के लिए प्रतिबद्ध है और संविधान में किए गए प्रावधानों को तदनुसार लागू भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय द्वारा सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे ने कहा कि सरकार तीनों तहों पर मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। समारोह में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर ने मानवाधिकार संस्कृति के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इसे और अधिक प्रभावी बनाकर एक सुरक्षित विश्व का निर्माण जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम में नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल ने कहा कि चूंकि समान समाज बनाकर मानवाधिकारों का सम्मान किया जा सकता है, इसलिए समाज में भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। हर साल 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर नेपाल हर साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाता रहा है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह निष्ठावान है। 76वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पौडेल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग की भूमिका को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सरकार क्रियाशील है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा है कि एक आर्थिक वर्ष में 5 लाख नौकरियां पैदा की जानी चाहिए। 76वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर आज काठमांडू में ह्यूमन राइट्स एंड पीस सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं का पलायन रोकने के लिए देश में रोजगार पैदा किया जाना चाहिए। महामंत्री थापा ने कहा कि जिस तरह एक आर्थिक वर्ष में कितना राजस्व एकत्र हुआ, उसी तरह ये भी मापा जाना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी नौकरियां पैदा हुई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री तथा पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा सफल रही। एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज ललितपुर के चैसल में एमाले केंद्रीय कार्यालय में आयोजित सचिवालय बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा सफल रही। नेता गयावाली ने कहा कि पार्टी ने चीन और नेपाल के बीच हुए समझौते को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उपचुनाव का आकार पार्टी को शहरी जनमत से जोड़ेगा। नेकपा एकीकृत समाजवादी की स्थायी कमेटी बैठक कल के लिए बुलाई गई है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय तीनकुने में कल और परसों के लिए बुलाई गई बैठक में सांगठनिक गतिविधि, जिला तथा प्रदेश के अधिवेशन, नेताओं का कार्य विभाजन, स्थानीय तह के उपचुनाव की समीक्षा और देश के समसामयिक राजनीतिक विषय पर विचार विमर्श होगा। ये जानकारी उप महासचिव तथा केंद्रीय कार्यालय सचिव राम कुमार भट्टराय ने दी। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने में स्वर्गीय मंगला देवी सिंह का योगदान अद्वितीय है। नेपाल महिला संघ के संस्थापक अध्यक्ष मंगला देवी सिंह की 100वीं जयंती के अवसर पर आज नेपाल महिला संघ द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों, लोकतंत्र और समानता के लिए मंगला देवी सिंह का योगदान अद्वितीय है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि अपराध में शामिल होने के आरोपी व्यक्ति की जांच होने पर मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। आज सुर्खेत में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि करनाली में शांति और सुरक्षा के मामले में भले ही कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अपराध, हिंसा, नशा, आत्महत्या और घरेलू हिंसा चुनौती बनकर उभरी है। ये उल्लेख करते हुए कि सरकार मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मंत्री लेखक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानी के खिलाफ आरोपों की जांच को मानवाधिकारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंत्री लेखक ने कहा कि सहकारी धोखाधड़ी मामले में फंसे सभापति लामिछाने पर जांच को प्रभावित करने के लिए जो गतिविधियां की जा रही है वो सही नहीं है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन वाले देश का निर्माण करना है। उन्होंने ये भी कहा कि लुम्बिनी प्रदेश में करनाली प्रदेश की महत्वपूर्ण पुलिस संरचनाओं को जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाएगा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। नेकपा माओवादी केंद्र भरतपुर महानगर कमेटी द्वारा आज चितवन में आयोजित खबरदारी सभा में उन्होंने ये बात कही। बारा में गढ़ी माई का दर्शन कर सिरहा लौट रही जीप रौतहड़ में दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में अन्य 5 लोग घायल हुए हैं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत रौतहड़ के लमाहा में बीती रात जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगाहपुर के डीएसपी राजकुमार राय ने दी। जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई थी। मरने वालों में सिरहा की अरनामा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 बंठिया टोल के रामकुमारी देवी महरा, रामकुमारी महरा, शकुंतला देवी महरा, उर्मिला महरा, लरुवती देवी महरा, मागी देवी महरा, फुलमती देवी चमार और चालक श्री कुमार यादव शामिल है। हादसे में घायल हुए सभी को इलाज के लिए परसा के वीरगंज ले जाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर को भीषण सड़क हादसा हो गया। मैक्स लोडर और ट्रक में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जनपद हाथरस में मथुरा कासगंज हाईवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विरादक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अधिकारियों के मुताबिक मैक्स में 20 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एक कुरियर कंटेनर के पलटने की वजह से दुर्घटना हुई। इसराइल ने बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद सीरिया में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बशर अल असद की सत्ता के खात्मे के बाद इसराइल ने अब तक सीरियाई इलाकों में 310 हवाई हमले किए हैं। इसराइली हवाई हमलों में सीरिया के हथियार फैक्ट्रियों, हथियार और गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों और वैज्ञानिक शोध संस्थानों को निशाना बनाया गया है। ये हमले दमिश्क के बाहरी और सुदूर इलाकों में किए गए हैं। इसराइल ने कहा है कि सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद वहां के हथियार अतिवादियों के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए वो वहां हमला कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक समेत कई अरब देशों ने इसराइल के इस कदम की आलोचना की है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए बीआरआई कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क को परराष्ट्र मंत्रालय ने किया सार्वजनिक। फ्रेमवर्क अंतर्गत 10 परियोजनाएं हैं शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित और इसराइल ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।